कोविड ने न सिर्फ हमारे जीने का सलीका बदला, बल्कि इस वैश्विक महामारी ने कई ऐसे परिवर्तन किए जो कई सालों तक हमारे जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। जहां कोविड की वजह से बड़े नकारात्मक बदलाव देखने को मिले, वहीं कुछ ऐसे बदलाव भी सामने आए जो शायद बेहतर भविष्य की तरफ थे। ऐसे ही बदलावों में से एक बड़ा बदलाव था प्रदूषण का कम होना। महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण का स्तर कम हुआ, जो एक बहुत बड़ी राहत मानी जा रही थी। लेकिन ये राहत शायद कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि अगर आपको लगता है कोविड 19 ने ग्लोबल वार्मिंग के बिगड़ते प्रभावों पर विराम लगा दिया है, तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए वैज्ञानिक चार प्रमुख संकेतकों को देखते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, बढ़ता समुद्र स्तर, समुद्र की गर्मी और समुद्र का अम्लीकरण यानी कि समुद्र का एसिडिफिकेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार इन सभी ने 2021 में नए मानक स्थापित किए। प्रोफेसर पीट स्ट्रटन समुद्री और आर्कटिक अध्ययन संस्थान में एक जैविक समुद्र वैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि कोविड 19 और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी के कारण उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन इसी के साथ वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं।
I think there is a perception in the community that emissions have slowed down over the last couple of years, and they have, but the CO2 in the atmosphere is still growing and it's still having strong impacts on climate, hence the increases in the other indicators that we've seen. And, you know, it's worth pointing out too that people talk about some of the climate effects being baked in, like, you know, even if we were to stop emitting tomorrow, the consequences for things like melting ice sheets and sea level rise are still going to continue for decades. And you're absolutely seeing that in the sea level rise, because sea level rise for the last, well, since 2013 is increasing twice as fast as it was 15 years ago. So even though COVID has slowed down emissions, all of these climate indicators are still increasing.
Griffith विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर इयान लोव कहते हैं कि WMO की नवीनतम रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है।
Well, it's very worrying. I mean, it reinforces what the Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report released earlier this year said, which is that climate change is not just happening, but it's still accelerating. And the main reason it's still accelerating is that we're putting increasing amounts of greenhouse gases into the atmosphere. There was a minor pause during the pandemic, but the acceleration has resumed. And each year we are putting more greenhouse gases into the atmosphere. And as long as we keep doing that, all of the indicators of temperature, of rainfall change, of worse floods, of worse bushfires, they're all going to keep getting worse.
दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बदलता मौसम है। विश्व स्तर पर बढ़ते मौसम ने मानव जीवन पर भारी असर डाला है, जिससे खाद्य और जल सुरक्षा के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये परिवर्तन 2022 के पहले कुछ महीनों में ही सामने आने लगे हैं। नेशनल सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी और पॉपुलेशन हेल्थ के प्रोफेसर कॉलिन बटलर जलवायु शरणार्थियों के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करते हैं।
Already we've got climate refugees in Australia. We've got people living in cars and caravans who are flooded from Lismore. Houses are uninhabitable. But globally, I think it's becoming desperate. There's a report that one in four Africans currently are facing significant food insecurity. One in four. That's a phenomenally high number. And parts of Africa are affecting, you know, have food insecurity that traditionally didn't have it. And also, of course, with the food price, not just the food price, but the crops failing or the animals failing. People are naturally going to look for some alternative, and lots of them are going to end up in horrible refugee camps, I'm afraid.
इस विषय पर वो ये भी कहते हैं।
The concept of climate migrants is denied by quite a few governments because it then would mean some sort of moral, perhaps even legal, responsibility to prevent it. But to me, it's sort of playing with words. If somebody's if you're on a small island state and the sea level's rising and it's up to your door and there's other factors too and you migrate, I mean, whether it's a climate migrant or an environmental refugee or just an asylum seeker, it's still the same thing. You're displaced because it's just become unlivable where you were. And if you look ahead, this is going to get worse and worse.
जलवायु परिवर्तन के खतरे को गंभीरता से न लेने के लिए अक्सर ऑस्ट्रेलियन फेडरल सरकार की आलोचना होती रही है, खासकर तब जब हम ऑस्ट्रेलिया में बदलते मौसम के भारी प्रभाव देख रहे हैं। 2015 में तत्कालीन इमिग्रेशन मिनिस्टर पीटर डटन इसी विषय पर अपने सहयोगियों टोनी अबॉट और स्कॉट मॉरिसन के साथ चुटकी लेते और हंसते हुए पाए गए थे। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को लेकर प्रोफेसर लोव कहते हैं,
Well, the government has not just been missing in action, it's actually been making the problem worse. It's been tipping petrol on the fire by its policies to encourage greater use of fossil fuels. The Labor Party's policies are better, but they're still not good enough. The Greens and several of the independents had much better policies. And I suppose the best we can hope for is that those independents and the Greens might have enough say in the new parliament to force whoever's in government to take stronger action.
Professor Lov ye bhi kehte hain.
Government decisions decide things like whether we burn coal and gas or whether we accelerate the transition to clean renewable fuels. Government decisions determine whether we encourage electric vehicles or whether we keep burning petrol and diesel. Government's decisions determine whether the agricultural sector has incentives to store carbon rather than being a source of carbon. And these decisions are...
Professor Lov ka kehna hai ki isme se kai nirnay alpkalik aarthik laabh par aadharit hain. Lekin jalvayu parivartan ko dheema na karne ke liye lambi yojnaon ki zarurat hai, jisme adhik lagat lag sakti hai.
There is a real economic cost in the agricultural sector. Fruit and vegetables are more expensive at the moment as a result of the floods. The agricultural sector generally is coping with a changing climate, and that's going to make food security worse. And the tens of thousands of jobs that depend on tourism associated with natural assets like the Great Barrier Reef are being put at risk by short-term decisions to burn and export more coal and gas. So we really need to think when we're voting, are there candidates who are going to work towards a better future, or do we continue to elect candidates who are putting grubby short-term financial considerations ahead of our long-term interest?
आपको बता दें कि WMO रिपोर्ट का उपयोग अगली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में किया जाएगा, जो COP27 के रूप में इस साल के अंत में इजिप्ट में होने वाली है। SBS न्यूज से टीना क्विन की रिपोर्ट को हिंदी में पेश किया है विकास सवाना ने।